प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम शुरू करेंगे हमारा विषय नंबर एक, जिसका नाम है बाइबल को खोलने की चाबियां। विषय नंबर एक, बाइबल को खोलने की चाबियां। अगर हम हमारे पवित्र शास्त्र यानी कि बाइबल की तरफ देखें, जो कि परमेश्वर का दिया हुआ आत्मिक भोजन है, तो सबसे पहला जो हमारा पढ़ने का तरीका, इसको पढ़ने और इसको समझने का क्या तरीका है, इसके वचनों को अनुवाद करने का क्या तरीका है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है हर एक मसीही के जीवन में। जैसे हमने लास्ट टाइम जब हमने क्लास ख़त्म कर रहे थे, हमारा इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें हमने यही बोला था ना कि परमेश्वर के सामने ऐसा कारीगर ठहरने का यत्न कर जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो सच्चाई के वचन का सही तरीके से अनुवाद करे या सच्चाई के वचन को सही रीति से इस्तेमाल में लाता हो। ठीक है, सो बाइबल जो है आसान किताब नहीं है समझने के लिए, जैसे लोग मानते हैं। ठीक है, और कोई ही बोल सकता है कि उसको बाइबल का पूरा ज्ञान है। सो हम आज के विषय में यही सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा बाइबल की कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बाइबल शब्द कहाँ से आया और कैसे आया, बाइबल शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो आपको तो बाइबल स्टडी की है, उधर बताया होगा, बाइबल शब्द ग्रीक शब्द बिब्लोस, ठीक है, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में किताब। ग्रीक शब्द बिब्लोस, जिसका मतलब है किताब। किसकी किताब? परमेश्वर की किताब। ठीक है, साधारण और शक्तिशाली। परमेश्वर ने एक किताब लिखी सारी मनुष्य जाति के लिए, ठीक है, जिसमें उन्होंने अपना वचन, अपना नियम मनुष्य जाति को दिया। ठीक है, इस संसार में और भी बहुत सी किताबें हैं, या यजुर्वेदा या गीता या समावेदा या अथर्ववेदा। तो इंडिया की भाषा में अगर बाइबल को बोला जाए तो सत्यवेदा, यानी कि सच्चाई का वेद या सच्चाई की किताब। सो मैंने बोला ना कि हम बाइबल को खोलने की चाबियां शुरू करने से पहले थोड़ा कॉम्पोजिशन के बारे में जानेंगे। तो कॉम्पोजिशन में हम क्या देखते हैं, बाइबल कितने हिस्सों में बटी हुई है? दो हिस्सों में, पुराना नियम और नया नियम। पुराना नियम यीशु से पहले और नया नियम यीशु के बाद। ठीक है, यीशु की प्रेजेंस में, यीशु के बाद। सो पुराने नियम में 39 किताबें, नए नियम में 27 किताबें। लेकिन और इसको बोल सकते हैं 66 किताबों की एक किताब, किताबों की किताब है ना, 66 किताबें अलग अलग, उनकी एक किताब। लेकिन हमारे रोमन कैथोलिक भाई बहन या रोमन कैथोलिक ईसाई मानते हैं कि 66 से भी ज्यादा किताबें हैं। तो किसी तरह की बहस में पढ़ने की बजाय क्यों ना हम इस प्रश्न का उत्तर परमेश्वर के वचन में ही देखें। परमेश्वर अपने एक बहुत सुंदर नमूने के द्वारा इन किताबों के बारे में बोल रहा है कि बाइबल में कितनी किताब हैं, एक नमूने के द्वारा। और वो नमूना हम देखेंगे जब तंबू के बारे में जानते हो आप, तो सुना है टैबनैकल, जो तंबू होता था, जो मूसा को परमेश्वर ने दर्शन देके दिखाया था, उस तंबू में एक टेबल होता था। ठीक है, उस टेबल पे क्या रखा जाता था? मन्ना रखा जाता था, और वो मन्ना हर सबत को बदला जाता था। ठीक है, और जो याचक लोग होते थे वो उससे क्या करते थे? खाते थे। ठीक है, अभी वो मन्ना रखने का भी तरीका परमेश्वर ने क्या किया था, मूसा को बताया था कि ऐसे मन्ना होना चाहिए, और आरोन जो था, जो मुख्य याचक था वहां पे, वो उस मन्ने को उसी रीति से रखता था। और वो कैसे होता था ये पढ़ेंगे लेविटिकस, लेविया की किताब, लेवी की किताब 24 का 5 से लेके 7 तक, 24 का 5 से लेके 7 तक। लेविय 24 का 5 से लेके 7 तक। पांच का सात, पांच से लेकर सात तक।
और तू मैदा लेकर 12 रोटियां पकवाना, प्रत्येक रोटी में अप्पा कहो, दस दो दसवां अंश मैदा हो, तब उनकी दो पांति करके एक एक पांति में छह छह रोटियां स्वच्छ मेज पर यहोवा के सामने धरना।
कितने? 12 रोटियां बनाना, और 12 रोटियां को कैसे रखना टेबल पे? टेबल पे 12 रोटियों को कैसे रखना? छ छ, दो लाइन में छ छ, ऐसे देखो, छ छ छ छ। जब इसको देखोगे छ छ को सामने से, तो कितने दिखेंगे? 66। और अगर आपको थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि मन्ना यानी कि रोटी जो किस चीज का चिन्ह है, रोटी रोटी सब यीशु मसीह ने बोला तेरे वचन मुझे मिले और मैंने उनको खा लिया, मत्ती 4:4। रोटी है आत्मिक भोजन, परमेश्वर का वचन। रोटी का मतलब होता है परमेश्वर का वचन, ठीक है? तो इसलिए इस तरह से परमेश्वर ने इस नमूने के द्वारा ये स्थापित किया है, ये सिद्ध किया है कि उनके वचन में, उनके आत्मिक भोजन में कितनी किताब है, ठीक है? सो उसके बाद पहली पांच किताब जो हैं पुराने नियम की, जो जिनके वो हम यहूदी जो है वो मूसा ने लिखी थी, जो उसको तोरा बोलते हैं यहूदी, ठीक है? और इसमें परमेश्वर ने उनको बहुत बहुत पवित्र नियम दिए हैं, ठीक है? क्या बोल सकते हो कि वो इसको बहुत पवित्र मानते हैं। और अगर आपको पता हो इसराइल में ना जैसे स्क्रोल्स नहीं होते, ऐसे रखते हैं उनको, पवित्र अपने घरों में रखते हैं, जैसे रोमन कैथोलिक वाले रोजरी वगैरह ये सब रखते हैं ना, ऐसे ही एक जैसे पुराने समय में आपने देखा है कि राजा लोग पत्र भेजते होते थे, ऐसे ही जैसे 10 कमांडमेंट्स को ऐसे रोल करके ना ऐसे किसी दांत में जो सोने जैसी दिखती, जैसे पीतल जैसी दांत में, उसमें रोल करके रखते हैं। तो वो बड़ा पवित्र मानते थे क्योंकि उसमें परमेश्वर ने उन्हें व्यवस्था दी थी, 3600 से भी ज्यादा उनको नियम दिए थे करने के लिए, जो हमें पता चलते हैं ये नंबर्स की किताब में, ठीक है? सो बाइबल को कंप्लीट होने के लिए, लिखे जाने के लिए कितने साल लगे, कुछ आइडिया है? 1700 साल, 1600 साल पुराने नियम को और 100 साल नए नियम को, ठीक है? इस संसार में कोई भी ऐसी किताब नहीं है जिसको इतना समय लगा हो पूरा होना के लिए। और सबसे पहली किताब कौन सी है लिखी गई थी, जो सबसे पहली किताब? अय्यूब, अय्यूब और अंतिम प्रकाशित वाक्य 96 एडी में, ठीक है? बाइबल को लिखने के लिए कितने लेखकों का इस्तेमाल हुआ? 40, 40 लेखकों ने लिखा। लूका जो कि क्या था, एक डॉक्टर था, और मत्ती एक चुंगी लेने वाला था, दाऊद डेविड क्या था, एक चरवाहा बाद में जो राजा बना, सुलेमान क्या था, एक राजा, मूसा बहुत पढ़ा लिखा था, ठीक है, और पौलुस फरीसी, अमोस एक गरीब चरवाहा, पत्रस मछली पकड़ने वाला। तो ये 40 के जो 40 थे लेखक, इनका सबका बैकग्राउंड अलग अलग था। कोई डॉक्टरी लाइन से आ रहा था, कोई मत्ती चुंगी लेने वाला था, कोई मछली पकड़ने वाला था, कोई अयाली था, चरवाहा था। तो इनकी सबकी बैकग्राउंड क्या थी, अलग अलग। लेकिन जो इनकी लिखित लिखी इन्होंने, जितने भी ये चैप्टर लिखे, ये पूरा बाइबल के जितनी भी कंपोजिशन है एक दूसरे के साथ मेलजोल खाती है। ऐसा नहीं है कि पत्रस के कुछ और व्यूज हैं और मूसा के कुछ और व्यूज हैं और पौलुस के कुछ और व्यूज हैं या फिर दाऊद के कुछ और व्यूज हैं, नहीं, सबका एक ही व्यू है और एक दूसरे के साथ कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, सब एक दूसरे के साथ तालमेल में है, अलग अलग नहीं है, तालमेल में है। ठीक है, तो ऐसा अगर इंसान चाहे तो हो सकता है, आपकी और मेरी सोच नहीं एक हो सकती, आपकी और सिस्टर की एक सोच नहीं हो सकती, आप भाई बहन हो। तो देखो ये 40 लोगों की एक ही सोच और एक ही मतलब के तालमेल के साथ इन्होंने जो लिखा वो सामने आया। तो इसका मतलब ये है कि असली लिखने वाला कौन है बाइबल को, बाइबल को असली लिखने वाला कौन है? परमेश्वर। और इसके लिए साफ साफ हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 1:1-2, पिछली बार भी हमने पढ़ा था। इब्रानियों 1:1-2
एक का एक वचन पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से विशेषताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की।
सो देखिए इस समय में सारे में किसने बातें की? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बातें की, कभी नबियों के द्वारा, कभी किसी के द्वारा, कभी नमूनों के द्वारा, अंत में पुत्र के द्वारा। लेकिन बात कौन कर रहा है? परमेश्वर। दूसरा तिमोथी 3:16 भी यही बोल रहा है। दूसरा तिमोथी 3:16 दूसरा तिमोथी 3:16
हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने
हर एक यहाँ पे हर एक है, लेकिन इंग्लिश में ऑल स्क्रिप्चर और संपूर्ण पवित्र शास्त्र जिसे बोल सकते हैं परमेश्वर की प्रेरणा से है। तो हम साफ साफ पढ़ते हैं कि बाइबल को लिखने वाला परमेश्वर खुद है, हथियार के तौर पे उसने इन 40 लेखकों को इस्तेमाल किया। और अगर आपको पता है हो कि संसार में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है, बाइबल ही है। इवन नॉन क्रिश्चियन जो लीडर्स हैं, जो नॉन क्रिश्चियन नेता है, उन्होंने भी बाइबल को पढ़ा। दलाई लामा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, आप इस पे चाहे विश्वास करो या ना करो, लेकिन एक बाइबल के सिर्फ एक वचन से भारत को आजादी मिली। पता कौन से वचन से? महात्मा गांधी ने वो एक वचन पढ़ा था और उसने वो अहिंसा ही बोलते ना नॉन वायलेंस को, अहिंसा का जो रास्ता बनाया वो अपनाया एक वचन को पढ़ के। पता वो कौन सा वचन? प्रभु यीशु मसीह का वचन। पढ़ो जरा मत्ती 5:39। उस एक वचन की वजह से महात्मा गांधी क्या बन गया? देश का पिता, फादर ऑफ नेशन बोलते ना उसको। 39 मत्ती 5:39
परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा बिखेर दे।
देखो सो इसका क्या मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोल क्या कहने का मतलब था कि जब तेरे को थप्पड़ मारे तो तू दूसरा भी सामने कर देना। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब ये है ये साधारण तौर पे संभव है, ऐसा नहीं कर पाएंगे ना हम, चाहे जितनी मर्जी हम में नम्रता हो कर पाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का यहाँ पे मतलब क्या था कि बुराई का सामना बुराई के साथ नहीं करते। हर इंसान के पास दो पक्ष होते हैं, एक तो कठोर और एक नरम, होते हैं या नहीं होते हैं। तो देखिए अभी प्रभु यीशु मसीह के कहने का क्या मतलब था, आप मेरे सामने हैं, मेरा दायां हाथ है, आपका बायां गाल है, जब मैं आपके ऐसे मारूंगा पहला लग जाएगा, लेकिन आप सपोज करो टर्न करो दूसरी साइड आगे करो, करो आगे ऐसे, तो मैं मार पाऊंगा ऐसे, ऐसे मार पाऊंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा ना, या मुझे इधर का हाथ करना पड़ेगा ना, सीधा इसी से तो उसी फ्लो में तो नहीं मार सकता ना, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के कहने का क्या मतलब था, जब आपका सामना कठोरता से हो रहा हो तो आप अपना नरम साइड सामने कर दो, तो ये कठोर अपने आप क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा। लेकिन जब कठोरता का सामना कठोरता से करते जाओगे तो क्या होगा, फिर लड़ाई बढ़ते ही जाएगी। इसीलिए गांधी ने क्या किया, इस वचन को क्या लिया, हम सहेंगे, ठीक है मारो मारो मारो, लेकिन अंत में क्या हुआ, गुरु को देश छोड़ के जाना पड़ा और गांधी जी देश के पिता बन गए एक वचन के वजह से। आज ये वचन पार्लियामेंट में लिखा हुआ है, लेकिन सब बोलते हैं कि गांधी जी के वचन है, लेकिन है किसके, प्रभु यीशु मसीह के। बाइबल 2000 भाषा से ज्यादा भाषा में लिखी गई और पहली बार जो प्रिंटिंग हुई थी 1454 में, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बोला था ना, बाइबल है आत्मिक भोजन परमेश्वर की तरफ से। तो पढ़ते हैं उसके लिए वचन, मती 4:4, उसके बाद व्यवस्था सार 8:3, मती 4:4, व्यवस्था सार 8:3 और यरमिया 15:16, व्यवस्था सार 8:3, यरमिया 15:16।
उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है युद्ध रहेगा।
देखो सो रोटी, आत्मिक रोटी क्या है, परमेश्वर का वचन। रोटी का मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन। पढ़ लो फिर से व्यवस्था सार 8:3। ब्रदर आपकी नेक्स्ट पहली असाइनमेंट पता क्या होगी क्लास के बाद, कि आने वाली क्लास से पहले आप सब लेसन को वो करेंगे कि कौन सा कहाँ पे है, लिस्ट को याद रखेंगे, तो इंडेक्स देखने की जरूरत नहीं फिर आपको।
उसने सूर्य को नरम बनाया और भूखा भी होने न दिया, फिर वह मन्ना जिसे तुमने ना तेरे पुरखों भी जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से नरम जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहेगा।
देखिए यरमिया 15:16, यरमिया 15:16 यर्मिया 15:16।
जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ।
देखिए, सो तेरे वचन जब मुझे मिले तो मैंने उनको क्या कर लिया, खा लिया। सो परमेश्वर का वचन का मतलब क्या है, रोटी, आत्मिक रोटी। सो जैसे शारीरिक रोटी अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग है, ऐसे ही आत्मिक रोटी भी अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग है। जैसे शारीरिक रोटी कहाँ से शुरू होती है, बच्चे को क्या करते हैं, हम दूध से शुरू करते हैं, फिर धीरे 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 कहाँ तक लेके जाते हैं, रोटी तक। ऐसे ही वचन भी है, वचन की रोटी भी दूध से शुरू होती है और अन्न तक पहुंचती है। पढ़ो जरा इब्रानियों 5:12-14। इब्रानिया 5:12-14। देखो, अन्न के बदले दूध चाहिए। हाँ,
क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती।
जी,
क्योंकि वह बालक है,
क्योंकि वह बालक है।
पर अन्न सयानों के लिए है, जिनके ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं।
तो देखिए, इसमें चेला पौलुस ये बता रहा है कि समय के अनुसार तो तुम्हें शिक्षा देने वाले बन जाना चाहिए था, लेकिन तुम फिर से ऐसे बन गए हो जिनको आरंभ की बातें फिर से कोई सिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे चेला पौलुस साफ साफ अंतर बता रहा है कि वचन का दूध भी है, वचन का अन्न भी है। तो जैसे बच्चा जो क्या बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं उनको दूध से ही अन्न तक लेके जाया जा सकता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन को भी, आत्मिक भोजन की बढ़ोतरी भी दूध से शुरू होती है, अन्न तक क्या करती है, पहुंचती है। लेकिन ये दूध है क्या, दूध का मतलब क्या है, हम पढ़ेंगे इब्रानियों का 6:1-3।
इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं।
देखिए, वो बोल रहा है आरंभ की बातें छोड़ें और अभी थोड़ा संपूर्णता, सिद्धता की तरफ, ज्ञान, समझदारी की तरफ बढ़ें थोड़ा। ये आरंभ की बातें हैं, कौन सी, अभी वो बता रहा है कौन सी आरंभ की बातें हैं, पढ़िए जरा।
और मरे हुए कामों से मन फिराने,
मरे हुए कामों के मन फिराने,
और परमेश्वर पर विश्वास करने,
परमेश्वर पर विश्वास करने,
और बपतिस्मों और हाथ रखने,
बपतिस्मों और हाथ रखने,
और मरे हुओं से जी उठने,
मरे हुओं में से जी उठना,
और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले।
अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डाले का क्या मतलब है, ये शुरुआती शिक्षा है। हाथ रख के प्रार्थना करता, बपतिस्मा दे की बातें करना, मुर्दों में से पुनर्थान, और अंतिम न्याय, और मुर्दे कामों से तौबा करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, ये सारी कौन सी बातें हैं, शुरुआती बातें। और ये है परमेश्वर के वचन का दूध, परमेश्वर के वचन का दूध। क्योंकि ये सारी कौन सी शिक्षा है, आरंभ की शिक्षा, शुरू की शिक्षा। ठीक है, सो ये सारी बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, बेसिक डॉक्ट्रिनल टीचिंग जिसे बोल सकते हैं, जितने भी हैं ये परमेश्वर का दूध है, परमेश्वर के वचन का क्या है, दूध है। इसको छोड़ के हमें क्या करना है, अभी सिद्धता की तरफ बढ़ना है। सिद्धता का मतलब समझते हो क्या, समझदारी, थोड़ा अभी ज्ञान में बढ़ना है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी बातों को छोड़ के अभी आगे बढ़ना है। और चेला पत्रस साफ साफ बोल रहा है, पढ़िए पहला पत्रस दो का दो। नींद तो नहीं आ रही ब्रदर आपको,
नहीं, नहीं।
सुन रहे हो? आपका ध्यान तो मुझे लग रहा है कहीं और ही खोए हुए हो आप। हाँ पहला पत्रस दो का दो, पहला पत्रस दो का दो।
जन्मे हुए बच्चों की नहीं, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो।
हाँ, निर्मल और आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। सो जितनी भी आत्मिक बढ़ोतरी है दूध से शुरू हो, लेकिन अन्न तक क्या होनी चाहिए? पहुंचनी चाहिए। क्योंकि पहले हमने क्या पढ़ा है, जो कोई दूध पीता है वो धार्मिकता के वचन से क्या है? अनजान है, उसको पता नहीं है कुछ भी, वो बच्चा है। ठीक है। सो इसलिए बहुत जरूरी है ये समझना, बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि हम बाइबल को पढ़ें कैसे, क्योंकि ये इतनी मुश्किल किताब है, इतनी मुश्किल किताब है कि मैं आपको धीरे धीरे प्रकट हो जाएगा जब जब जैसे जैसे क्लास करेंगे कि कितनी गहराई है इन बातों में। ठीक है। ये एक ऐसी किताब है जिसको ताला लगा हुआ है, और अगर ताला लगा हुआ है तो परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो चाबियां रखी होंगी ना। तो ये अभी हमने सब सीखा बाइबल की कॉम्पोजिशन के बारे में, बाइबल कैसे लिखी गई, बाइबल शब्द का मतलब क्या है, कितने लेखकों ने बाइबल को लिखा, और कितने तरह के परमेश्वर की तरफ से ये भोजन है, और इस भोजन, ये भोजन दूध से शुरू होता है और कहाँ तक पहुँचता है? अन्न तक पहुँचता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे वो तीन सोने की चाबियां। ठीक है। तीन सोने की चाबियां जिससे हमारे लिए आज के बाद बाइबल को पढ़ना और समझना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। देखना आप इसमें फर्क देखिएगा। ठीक है। सो पहली चाबी के लिए वचन पढ़ेंगे हम यशाया 28 बाब उसका 10 आयत। यशाया 28 का 10, पहली सोने की चाबी का वचन। अट्ठाईस का दस, अट्ठाईस का
नियम पर नियम
नहीं, पूरा पढ़िए उससे पहले, आज्ञा पर आज्ञा दस, नौ से शुरू होता है। ये तो फिर बाइबल में गड़बड़ी है। आप अपनी इंग्लिश की बाइबल में देखिए। आप नेपाली में पढ़ना ब्रदर, यशाया 28 का 10। दिखाइए हिंदी की बाइबल, दिखाइए मुझे। ओ, ये बाइबल में गड़बड़ी है दादा, गड़बड़ी, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। सो मैं बताता हूँ हिंदी में, मैं बताता हूँ क्या है। आज्ञा पर आज्ञा नियम पर नियम थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। आज्ञा पर आज्ञा नियम पर नियम थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। इस वचन का क्या मतलब है? समझ में आया? हम सबको समझ में, मुझे भी नहीं आया था शुरू में जब मैंने पढ़ा था। ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम नौवां वचन पढ़ेंगे। जरा नौवां वचन पढ़िए सिस्टर, हिंदी में नौवे का शुरुआत से पढ़िएगा।
पढ़ना किसको ज्ञान सिखाएगा?
वह किसको ज्ञान सिखाएगा?
और किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा?
किसको अपने समाचार का अर्थ समझाएगा? तो यहाँ से हमें पता चलता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या कि परमेश्वर अपने वचन की शिक्षा किसको देना चाहेगा? तो ये जो बात हो रही है, ये वचन की शिक्षा की बात हो रही है कि हर आज्ञा पर आज्ञा है, आज्ञा पर आज्ञा है, और नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो इसका अभी मतलब समझेंगे हम क्या है वचन का। आज्ञा पर आज्ञा का क्या मतलब होता है और नियम पर नियम का क्या मतलब होता है? आज्ञा का मतलब होता है टीचिंग, जिसे बोल सकते हैं शिक्षा या विषय, शिक्षा या विषय, ठीक है। और नियम का मतलब पता क्या है? एक एक वर्स। वर्स को हिंदी में क्या आप बोल सकते हैं? आप आयत, एक एक आयत, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है इस वचन का कि हर बाइबल में शिक्षा पे शिक्षा है, शिक्षा पे शिक्षा है, विषय पे विषय है, विषय पे विषय है, और उस हर एक विषय में अलग अलग आयत है। और ये अलग अलग आयत कहाँ पे है? थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। एक ही जगह पूरी स्टोरी नहीं बता दी गई है, निचोड़ नहीं निकाल दिया, ठीक है, एक जगह पढ़ा और बता दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये बोल रहा है वचन कि हर शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न आयते हैं, अलग अलग आयते हैं, हर एक विषय के लिए अलग अलग आयत है, जो कुछ तो उत्पत्ति में है, कुछ इब्रानिया में है, कुछ प्रकाशित वाक्य में है, कुछ मती में है। ये वचन है, ऐसे बिखरे पड़े हैं। इन सारे वचनों को क्या करना है? इकट्ठा करना है, जो थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां का मतलब क्या है? अलग अलग किताब में है, अलग अलग किताब में है, कुछ इब्रानिया में है, कुछ आपका उत्पत्ति में है, ऐसे। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था एक विषय, इनोक, हनुक। हनुक के बारे में बाइबल में सिर्फ तीन किताब में जिक्र आता है, एक तो उत्पत्ति में आता है, एक इब्रानियों में आता है, और एक यहूदा में आता है, ठीक है। सो सिर्फ तीन वचन हैं। जब तक हम ये तीनों वचनों को निकाल के पढ़ते नहीं है पूरी स्टोरी, पूरी कहानी, तब तक हमें संपूर्णता से कैसे पता चल जाएगा कि हाँ भी इनोक का क्या हुआ? क्योंकि इब्रानियों में लिखा है इनोक मौत नहीं देखेगा, उत्पत्ति में लिखा है, क्या लिखा है कि इनोक जो है परमेश्वर के साथ चलते चलते अलोप हो गया, और यहूदा में यह बताया जाता है कि जो इनोक था, हनोक था, वो आदम की सतवीं पीढ़ी थी। तो देखो कैसे शुरू हुआ, जो अंत में वचन है वो सबसे पहले है, जो अंत में है वो सबसे क्या है? पहले। कैसे हमें पता चलता है? ओके, हनोक जो है वो आदम की सतवीं पीढ़ी है। फिर आगे आगे की कहानी ये पता चलती है कि हनोक मौत नहीं देखेगा। तो जो इब्रानिया वाला वचन है वो दूसरा वचन है, और तीसरा जो उत्पत्ति में लिखा है वो अंतिम वचन है कि वो परमेश्वर के संग चलते चलते अलोप हो गया। अभी कहानी का अंत है पता चला सही तरीके से, शुरू शुरू के वो कौन था और वो उसको परमेश्वर ने क्या वायदा किया और अंत में उसका क्या हुआ। लेकिन उत्पत्ति में जब आप पढ़ते हो परमेश्वर के संग चलता चलता अलोप हो गया, कहां गया पता नहीं, समझ नहीं आई, है ना। सो ये होता है इसका मतलब कि हर एक विषय के लिए अलग अलग वचन है। कुछ किस किताब में पढ़े हैं, कुछ किस किताब में पढ़े हैं, ठीक है। सो अभी इनको जब तक हम पूरी तरह से इकट्ठा नहीं करते, तब तक हमें पूरा पता, पूरी कहानी की पूरी स्टोरी जो है वो पता नहीं चल सकती, ठीक है। सो अभी इनोक के बारे में जब वचन हम पढ़ लेंगे, जब ये लाइट आएगी, तीन वचन जो हैं। लेकिन इसमें एक और बात नोट करने वाली ये है कि आपने देखा इस वचन को दो दो बार बोला है, आज्ञा पर आज्ञा, फिर बोला आज्ञा पर आज्ञा, दो दो बार क्यों? एक बार काफी नहीं था क्या? फिर बोला नियम पर नियम, फिर बोला नियम पर नियम, दो दो बारी क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, बिना कारण के तो ऐसे नहीं लिखा गया। दो दो बार इसलिए बोला कि हर शिक्षा के लिए, हर विषय के लिए दोनों नियम में क्या होना चाहिए, पुराना नियम और नया नियम में क्या होनी चाहिए, मौजूद होना चाहिए। इसलिए ये लिखा है दो दो बार। पुराने नियम में भी वो शिक्षा है, नए नियम में भी वो शिक्षा है। पुराने नियम में भी वचन है, नए नियम में भी क्या है, वचन है। सो दोनों ही किताबों की स्टडी जो है, दोनों ही किताबों को पढ़ना बहुत जरूरी है अगर हमें क्या पहुंचना है, किसी नतीजे पर पहुंचना है, अगर किसी कहानी का पूरा क्या बोलते हैं अनुवाद हमें देखना है। ठीक है, तो अभी ये परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया कि थोड़े वचन यहाँ, एक एक परमेश्वर एक एक विषय लेता। ठीक है, जैसे आजकल किताबें, दसवीं की किताबें, वो क्या बोलते हैं उसको, पॉकेट जैसे होती ना, जैसे साइंस की, साइंस के मेन मेन क्वेश्चन सारे विषय एक जगह इकट्ठे कर दिए, हिस्ट्री के एक जगह इकट्ठे कर दिए, मैथमेटिक्स के। तो परमेश्वर भी ऐसे कर सकते थे ना कि ये 66 किताबों में एक एक विषय को लेके सारे वचन एक जगह ही डाल सकते थे, है ना। ऐसा करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो इसके लिए उत्तर ये है कि बाइबल क्या है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के वचन का क्या मतलब हुआ कि ये एक ऐसी किताब है जो परमेश्वर के लिए अनमोल है, जो परमेश्वर का वचन है। ठीक है, परमेश्वर का क्या है, ये खजाना। अगर इसको कोई पकड़ के निकल ले तो क्या हो जाए, जीवन प्राप्त कर ले, है ना। कौन सा वो जो जीवन, जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो वो परमेश्वर की इच्छा ही है कि ये जो क्या बोलते हैं ये किताब को, मतलब और ये विषयों को एक लॉक तरीके में हो। हमारे, अगर हमारे घर में कोई खजाना हो, हमारे पास चलो थोड़े जेवरात हैं सोने के, तो हम उनको कैसे रखते हैं, लॉकर में, अच्छी तरह से पूरी सेफ जगह पे। तो परमेश्वर का ये वचन है, क्या परमेश्वर लॉक करके नहीं रखेंगे, परमेश्वर संभाल के नहीं रखेंगे। परमेश्वर हर किसी को तो ये वचन देंगे जब समय आएगा, लेकिन अभी तो ये परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल वचन है। उन लोगों को तो नहीं देंगे ना जो इनका गलत फायदा उठाएंगे या अपने पैरों के नीचे रौंदेंगे, सुअर वाला काम करेंगे, उनको तो नहीं देंगे ना। सो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इनको बांट दिया। ठीक है, कैसे बांटा, अभी पढ़ो यशाया 34 का 17। यशाया 34 का 17,
उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली, उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है, वह सर्वदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे।
34 का 16, 17 ही था ना, 34 का 17, उसी ने उनके, हाँ ठीक है ठीक है। तो ये क्या है, अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ो तो सिस्टर ऐसा वचन मैं पढ़ता हूँ, एंड ही हैथ कास्ट द लॉट फॉर देम। लॉट, लॉट समझते हो ना, लॉट, लॉट क्या होता है, एक जैसे गाड़ी जा रही हो तो उसका लॉट निकलता है ना, बोलते लॉट जा रहा है वो, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई भी खिलौने बनाने वाली कंपनी, तो खिलौने बनाने वाली कंपनी का जब एक माल निकलता है, ट्रक में माल निकलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉट, लॉट जा रहा है। हाँ, लॉट, लॉट इंग्लिश में लॉट, हिंदी का लॉट नहीं, लॉट आना नहीं, वो लॉट जो क्या बोलते हैं,
लोडिंग,
एक एक मतलब के ग्रुप जा रहा है, एक ग्रुप जा रहा है ऐसे। ठीक है, तो क्या बोलता है, उसी के हाथ ने उसको बांटा है और विभिन्न विभिन्न देशों में बांट दिया। इसका क्या मतलब है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बताता हूँ कि आपने कभी वो खेला है चोर सिपाही और वो राजा वाला गेम, है ना। उसमें क्या होता है, एक पेज लेते हैं हम, पेज को क्या करते हैं, चार हिस्सों में बांट देते हैं, ठीक है, एक पे राजा लिख देते हैं नंबर लिख देते हैं, दूसरे पे क्या कर देते हैं वजीर लिख देते हैं नंबर लिख देते हैं, एक पे सिपाही एक पे चोर, और फेंकते हैं और जिसके हिस्से में जो आ गया। सो परमेश्वर ने अपनी शिक्षा के वचनों के साथ भी ऐसे किया, एक विषय उठाया, एक विषय के वचनों को लिया और वचनों को अपने तरीके से परमेश्वर ने ऐसे डाल दिया। ये परमेश्वर का तरीका है सच्चाई को लॉक करने का। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण बताऊं क्या, जब यहूदा मर गया प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद पेंतिक्रूस के दिन से पहले, प्रेरितों ने क्या फैसला किया, क्या सिस्टर आपने तो बाइबल से ली,
पर्ची डाली थी
यस, उन्होंने बोला कि अभी यहूदा की जगह कौन ले, यहूदा की जगह लेने के लिए उन्होंने फिर क्या किया, पर्चियां डाली, और पर्चियों में किसका नाम आया, मत्तियास का। तो ये परमेश्वर का तरीका है जो जिससे वो अपनी सच्चाई को क्या करते हैं, लॉक करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि बाइबल एक क्या बोलते हैं, ताला लगी हुई किताब है, और कोडेड, कोडेड समझते हो ना, कोड, कोड दिए हुए हैं, जैसे आपका टीवी है, टीवी, टीवी का जो बुकलेट रहता है उसमें लाइन 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 देखे कभी आपने, हमें समझ नहीं आता, लेकिन उसे बोलते बार कोड, उसमें क्या रहता है, उसका मॉडल नंबर सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन रहती है। इसी तरह से बाइबल भी एक कोडेड किताब है, आसान किताब नहीं है, ठीक है, अगर कोई काम नहीं मिल रहा है तो चलो बाइबल दी, बाइबल बगल में और निकल पड़े पास्टर बनने, नहीं, बाइबल बहुत मुश्किल किताब है समझने के लिए और समझाने के लिए। तो इसको खोलना कैसे है, अभी खोलने का भी परमेश्वर ने ही तरीका बताया है, पढ़िए 16वें वचन में यशाया 34:16,
यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इन में से एक भी बात बिना पूरे हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है
जी,
और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है।
देखिए परमेश्वर की हर एक शिक्षा के लिए बोलते जोड़े हैं, जोड़े, दे आपने, आपको पता है परमेश्वर ने धरती पे हर एक चीज का जोड़ा बनाया है, आदमी औरत का जोड़ा बनाया है, ठीक है, कुत्ते और कुतिया का जोड़ा बनाया है, हर एक चीज का जोड़ा है, कोई है ऐसी चीज जिसका जोड़ा नहीं है, है ना। तो इसी तरीके यहाँ पे इस जोड़े का क्या मतलब बोल रहे हैं, अगर बाइबल में एक जगह प्रश्न उठ रहा है तो उसका उत्तर भी बाइबल में ही मौजूद है, उसका जोड़ा है कहीं ना कहीं, लेकिन उस जोड़े को ढूंढने के लिए क्या चाहिए, परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ही उसको क्या कर सकता है, इकट्ठा कर सकता है, और जब इकट्ठा हो गया तो हमारा सारा डाउट, हमारे प्रश्न का उत्तर हमें क्या हो जाएगा, साफ साफ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी आपको पहली चाबी समझ आ गई, इसमें कोई प्रश्न या कोई बात नहीं समझ आई हो, कोई प्रश्न या कोई बात समझ में नहीं आई हो, आपको सर नाम
नारायण,
नारायण जी बताइए, नींद आ रही है, नहीं, चलो 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपको समझ आ गई ब्रदर मोनू, आपको सर आ गई समझ,
मेरे थोड़ा थोड़ा आ गई, इतना नहीं।
अच्छा सिस्टर आपको चाहिए तो एक बार फिर से बोलूं ब्रदर, हाँ, तो मैं अभी आपको संक्षेप रूप में बताता हूँ। बाइबल में जो बाइबल है, बाइबल, बाइबल है विषयों की किताब, शिक्षाओं की किताब, ठीक है, और हर एक शिक्षा के लिए क्या है, अलग अलग वचन है, एक ही वचन नहीं है, अलग अलग है, और वो अलग अलग वचन कहाँ मौजूद है, अलग अलग किताबों में, ठीक है। बाइबल में कितनी किताब है, 66 किताब, 66 किताबों में कहीं पे भी वो पढ़े हो सकते हैं, इसलिए ये वचन का मतलब ये है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, ठीक है। हर एक शिक्षा के लिए अलग अलग वचन है जो अलग अलग किताबों में क्या है, मौजूद हैं, और इनको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, और हर एक प्रश्न का उत्तर मौजूद है बाइबल में। ऐसा कोई धरती पे प्रश्न नहीं है जो आपके मन में ऐसा कोई प्रश्न हो, ऐसा कोई नहीं है जिसका उत्तर आपको वचन ना दे सके, ठीक है, समझ आ गया अभी, ठीक है। अभी आपको मैं अंतर बताऊंगा, परमेश्वर ही बताते हैं ये कि बाइबल स्टडी दो तरह की होती है। कितने तरह की?
दो।
एक तो आपको आगे को लेके जाने वाली, एक पीछे को भी लेके जाती है। अभी 10 तो पढ़ लिया यशाया 28 का 10, पहली चाबी यही थी ना, यशाया 28 का 10। 13 भी पढ़ लो लेकिन उसके साथ कुछ और भी ऐड कर दिया। 13वां वचन पढ़िए अभी, यशाया 28 का 13, यशाया 28 का 13।
ये दूसरी चाबी है?
नहीं, अभी पहली चाबी अभी खत्म नहीं की हमने।
इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम
जी,
थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, जिससे वे ठोकर खाकर चित गिरे।
ये दसवें में नहीं था। जिससे वे ठोकर खाके चित गिरे
और घायल हो जाएं,
घायल हो जाएं
और फंदे में फंसकर पकड़े जाएं,
फंदे में फंसकर
पकड़े जाएं।
देखो ये भी परमेश्वर के द्वारा ही प्लान्ड है, मतलब परमेश्वर ने ही अनुमति दी है इस चीज की। तो ये जो दूसरी वाली बाइबल स्टडी है ये आपको आगे को नहीं लेके जाएगी, फंदे में फंस के गिर जाओगे, फंसे रहोगे। ठीक है, अभी अंतर जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अंतर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर का वचन क्या है। क्या है? पिछली बारी मैंने बताया था कि तेरा वचन ही सत्य है। परमेश्वर का वचन ही क्या है? सच्चाई है। अभी ये सही शिक्षा भी बाइबल से ही आ रही है और गलत शिक्षा भी कहां से आ रही है? गलत शिक्षा क्यों आ रही है? क्योंकि वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं है। क्यों आ रही है? वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं है, वो झूठ बोलने वाले की आत्मा के द्वारा है। ठीक है, तो अभी अंतर, अभी आपको मैं बाइबल स्टडी, मैं बोलता, हम बोलते हैं हम बाइबल स्टडी कोर्स देते हैं आपको, आपको 53 क्लास की स्टडी देंगे। तो एक एक विषय पे बात करते हैं हम और अंतर देखेंगे। आत्मा, आप आत्मा के बारे में क्या जानते हो? आत्मा मर सकती है?
नहीं।
शरीर नरक में जा सकता है?
नहीं।
शरीर नरक में नहीं जा सकता है, आत्मा मर नहीं सकती है ना, आत्मा नाश नहीं हो सकती, खत्म नहीं हो सकती है ना, है ना। अब हम ईसाई होने के नाते, बाइबल पढ़ने के बावजूद हम ये जानते हैं और मानते हैं कि आत्मा मरती नहीं है और शरीर नरक में जाता नहीं है। लेकिन हम बोलते हैं कि ये दोनों चीजें संभव है। हम नहीं बोलते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है। पढ़िए जरा, वचन पढ़ेंगे एक, ये सिर्फ अंतर के लिए। ठीक है, मती 10 का 28, मती 10 का 28। मती 10 की 28।
जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते।
हाँ जी।
उनसे मत डरना
जी,
पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है।
देखिए ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? बाइबल में। और जो के क्या है, जो क्या है? सच्चाई है। सिस्टर जरा इधर लाइट डालना जरा, हाँ इधर, हाँ थोड़ा सा। देखिए ये है अंतर, क्योंकि बाइबल, हर कोई जो बाइबल पढ़ता है, हर कोई जो बाइबल सिखाता है, वो सत्य नहीं हो सकता प्यारे भाइयों और बहनों। ठीक है, सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम वो बाइबल स्टडी करें जो हमें क्या लेगी, आगे को करे करे क्या करेगी, लेके जाएगी, पीछे को लेके। अगर अगर हम बोले कि आत्मा और ये मरते नहीं है नरक, तो हम पीछे को जाएंगे, हम आगे को नहीं जा सकते। ठीक है, अभी यीशु मसीह के शरीर का क्या हुआ पता आपको? यीशु मसीह का शरीर भी नरक में गया या नहीं?
ऊपर गया सीधा
शरीर को कैसे बोला प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है? ये मांस और लहू तो स्वर्ग के भागीदारी नहीं हो सकते, तो फिर प्रभु यीशु मसीह का शरीर कहाँ गया? एक और चौंकाने वाली बात बताऊं, हिंदी में साफ नहीं होगी, इंग्लिश में साफ होगी, पढ़ना जरा सिस्टर, ये पढ़िए पढ़िए, ये मैं देता हूँ आपको, ये पढ़िए 2:32।
This Jesus hath God raised up, whereof we all are witnesses.
31.
He seeing this before, spake of his resurrection of Christ, that his soul was not left in hell, neither
his soul was not left in
hell.
मतलब के वहां पे थी इसीलिए नहीं छोड़ी गई ना, वॉज नॉट लेफ्ट इन, मतलब कि छोड़ी नहीं गई नरक में। तो इसका क्या मतलब है सिस्टर? ये देखिए जरा, पढ़िए बाइबल, आप अपनी उसमें NIV में पढ़ लीजिए, NIV Acts 2:32, और आप इनको बता दीजिए अभी कि क्या लिखा है इंग्लिश में। 2:31.
Seeing what was ahead, he spoke of the resurrection of the Christ. Then he was not abandoned to the grave, nor did his body see decay.
So यहाँ पे difference है। तो लेकिन आपको आने वाले समय में जब मैं नर्क की सब पढ़ाई सिखाऊंगा उस वक्त सब क्लियर हो जाएगा कि क्या है। लेकिन यहां तो ये बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह के शरीर को नर्क में नहीं छोड़ा गया, मतलब कि छोड़ा नहीं, और ना ही उसके शरीर ने करप्शन देखी। तो ये सब का क्या मतलब है, ये तो हम आने वाले दिनों में देखेंगे जब हम स्टडी में बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम ये देख रहे हैं कि शरीर और आत्मा दोनों नरक में जाते हैं और खत्म भी होते हैं। नाश का क्या मतलब होता है? खत्म, नष्ट। तो ये बाइबल बोल रही है, तेरा वचन जो क्या है सत्य है। ठीक है, तो इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने सारी चीजों को नियत किया है और सारी चीजों को प्रूव भी किया है। और ये जो सच्चाई है ये हर किसी को नहीं दी है, मैंने बोला ना ये क्या है, खजाना। और ये खजाना परमेश्वर हर किसी को नहीं देता है। आज अगर हमें मिला है तो परमेश्वर की हम पे वाकई कोई दया हुई है जो हम इस सच्चाई को शुरुआत कर रहे हैं, और अगर इच्छा रही परमेश्वर की तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये थी पहली चाबी, और पहली चाबी के अंत में मैंने बताया अंतर शिक्षा का, एक शिक्षा जो आपको आगे को लेके जाएगी, एक शिक्षा जो पीछे को लेके जाएगी। ठीक है, तो अभी वो वचन पढ़ लेते हैं इनोक के बारे में, है ना, हनोक के बारे में जो वचन थे वो पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 5:24,
ऐसा दूसरी चाबी
नहीं, नहीं नहीं अभी पहली है। उत्पत्ति 5:24, 5:24, इब्रानियों 11:5, इब्रानियों 11:5, और यहूदा 14। उत्पत्ति 5:24, इब्रानियों 11:5, यहूदा 14। आप पढ़िए।
और हनोक परमेश्वर के पास पास चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया।
11:5 ये उदाहरण है। ठीक है, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां की।
विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे
देखो।
और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है।
देखो तो थोड़ी कहानी हमें पता चली उत्पत्ति में, थोड़ी कहानी पता चल रही है इब्रानियों में और यहूदा 14।
एक का चौदह सर,
एक ही है उसमें, एक ही है।
और हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था इनके विषय में ये भविष्यवाणी की कि देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया।
देखो देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ, तो हनोक ने भविष्यवाणी की, हनोक सातवीं पीढ़ी था, ठीक है। तो सब हमें थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ करके क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है, ठीक है। एक जगह ही कहानी नहीं बताई गई है, तो ये है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ का मतलब। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी चाबी की ओर। दूसरी चाबी की ओर बढ़ने से पहले क्या हम सस्ते की वेट करें या जारी रखें?
रोमा
हाँ जी, तो चलो करेंगे शुरू हमारी दूसरी चाबी। दूसरी चाबी जो है उसके लिए हम वचन पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 2:15। दूसरा तिमोथी 2:15 वचन कौन पढ़ेगा ब्रदर? दूसरा तिमोथी 2:15 बाइबल की दूसरी चाबी, बाइबल को खोलने। दूसरा तिमोथी 2:15 से
अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का यत्न प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए।
सो इसका क्या मतलब है? सो इस वचन का क्या मतलब है? मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि जो सच्चाई के वचन का सही तरीके से क्या करे, अनुवाद करे। तो मैं इससे पहले कि मैं आपको इस वचन के बारे में और गहराई में बताऊं, लेकिन आपको पहले ये बताऊंगा कि कविता लिखने वाले का अपना एक तरीका होता है ना। कविता लिखने वाला अपनी लैंग्वेज में लिखता है, अपने तरीके से लिखता है। ड्रामा लिखने वाला अपने तरीके से लिखता है ना। और वो साधारण तरीका नहीं होता है, सीधा सीधा नहीं होता है ना। सो इसी तरह से क्या बोलते हैं, बाइबल भी लिखी गई है। और बाइबल तीन तरह की भाषा में लिखी गई है। कितनी तरह की भाषा? एक तो साधारण भाषा, ठीक है। साधारण भाषा कैसी? कि शुरू में कुछ नहीं था, परमेश्वर का आत्मा आया और पृथ्वी और आकाश बन गए। ये सीधी सीधी बात है, समझ आ जाती है। हम एक दूसरे से बात कैसे करते हैं, कौन सी भाषा में? साधारण भाषा में, ठीक है। दूसरी तरह की भाषा जो है वो होती है पैराबोलिक, यानी कि दृष्टांतिक भाषा। दृष्टांत क्या होता है? जैसे दृष्टांत का तो आपको पता है, एक जिसे बोल सकते हैं छोटी छोटी कहानियां या पहेलियां, है ना, कहानियां टाइप। तो ये जो भाषा होती है पैराबोलिक या दृष्टांतिक भाषा, इसका अगर हम साधारण तरीके से मतलब निकालें तो हमारा अनुवाद सही नहीं होगा। हम सच्चाई के वचन का सही तरीके से अनुवाद नहीं कर सकते और ना ही उसे समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप सबने वो पढ़ा होगा, खोई हुई भेड़ वाला दृष्टांत पढ़ा है ना। कब पढ़ा जाता है वो खोई हुई भेड़ वाला दृष्टांत? जब एक आदमी बपतिस्मा लेने आता है, बपतिस्मा लेते वक्त बोला जाता है, माना जाता है कि ये खोई हुई भेड़ थी। जैसे मैं आया, मैं अजय नाम का बंदा, ये खोई हुई भेड़ थी, अभी ये वापस आ गई है, है ना। तो एक आदमी जो बपतिस्मा लेने आता है उसको क्या समझा जाता है कि ये खोई हुई भेड़ थी। लेकिन ये आप याद रखो कि ये दृष्टांतिक भाषा है, ये साधारण भाषा नहीं है। दृष्टांतिक भाषा होती है इसका कुछ आत्मिक महत्व होता है, और ये भी एक दृष्टांत है। खोई हुई भेड़ वाला हम क्या बोलते हैं, दृष्टांत, दृष्टांत ही बोलते हैं ना। तो अगर दृष्टांतिक भाषा को हम साधारण भाषा में ले समझें तो हमें सही समझ आएगी। जैसे आपने अभी आपने बोला कि वो खोई हुई भेड़ किसको बोला जाता है, एक बपतिस्मा लेने वाला जो आदमी होता है। लेकिन अब हम इसको पढ़ेंगे, इस पे गौर करेंगे और देखेंगे कि साधारण इसका अनुवाद क्या है, पहले साधारण तरीके से फिर इसका असली अनुवाद देखेंगे। पढ़ेंगे लूका 15 उसका 3 से लेके 7 तक। लूका 15 3 से लेके 7 तक। लूका 15 3 का 3 से लेके 7 तक। तीन से लेके 7 तक।
तब उसने
पढ़िए पढ़िए
उसने ये तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़े हो और उनमें से एक हो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कांधे पर उठा लेता है और घर आकर मित्रों पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ इस नीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं।
पढ़ लिया, इसमें कुछ नोट किया? सातवां वचन फिर से दोबारा पढ़ो।
मैं तुमसे कहता हूँ कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं।
सिस्टर इस पे ध्यान दिया, गौर किया? 99 धर्मी कहाँ से पैदा हो गए? है इतने धर्मी धरती पे मौजूद? लो तो किसी का नाम। पास्टर जी हमारे, ब्रदर जी हमारे चर्च का पास्टर लग रहा है धर्मी है। है वो धर्मी? बाइबल क्या बोल रही है, एक भी? तो इसका मतलब ये दृष्टांत को हम साधारण भाषा में अगर समझना शुरू करें तो फिर तो यहाँ बात ही नहीं बन रही है। बन रही है बात, क्योंकि 99 धर्मी तो यहाँ पे मौजूद नहीं है धरती पे। 99 तो छोड़ो, एक भी धर्मी नहीं है, है ना। वचन तो वो जानते हैं ना, रोमिया 3:10 लिखा है, है ना दादा, है ना। तो फिर इस दृष्टांत का असली मतलब क्या है, इस दृष्टांत का असली मतलब क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये तस्वीर दिखाई गई है इस दृष्टांत में परमेश्वर की, कि परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर ने बहुत सी क्या, सारी सृष्टि को आज्ञाकारी बनाया। परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर ने कुत्ते बनाए, परमेश्वर की सृष्टि में इंसान बनाए, परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में सूरज चंदा तारे बनाए, परमेश्वर ने मछलियां बनाई, परमेश्वर ने गाय बनाई, परमेश्वर ये अलग अलग सृष्टि है अलग अलग सृष्टि। इनमें से एक खोई, सबको पता है हमको कौन खोई, मनुष्य जाति। तो ये पूरी दृष्टांत में तस्वीर जो दिखाई है ये किसकी है, मनुष्य जाति की, ना के एक एक की। ये मनुष्य जाति है, ये जो एक धर्मी है ना, ये सारी मनुष्य जाति। क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाप किसके, कितने लोगों की वजह से आया, एक की वजह से, और उसके द्वारा ही की ये क्या आई, मृत्यु आई। और परमेश्वर ने फिर क्या किया इनको छुड़ाने के लिए? इनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? इकलौता पुत्र, योहन्ना 3:16, बड़ा फेमस वचन। तो इस दृष्टांत का जो असली मतलब है ये साधारण नहीं है, ये दृष्टांत है। इस दृष्टांत में परमेश्वर की तस्वीर दिखाई गई है कि परमेश्वर सारी सृष्टि का क्या है? मालिक है। और परमेश्वर ने अलग 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 सृष्टि बनाई है और उसको दिया नंबर, चलो मान लो 100 सृष्टि बनाई है, 100 में से सिर्फ एक खोई, और खोने वाली कौन थी? मनुष्य जाति। कहाँ खोई? पाप और मौत में। और उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने फिर अपना इकलौता पुत्र क्या किया? दे दिया। ये है दूसरी तरह की भाषा, है ना। तीसरी तरह की भाषा अभी कौन सी है? चिन्हों वाली भाषा, सिंबॉलिक जिसे बोलते हैं। कौन सी? चिन्हात्मक, सिंबॉलिक। प्रकाशित वाक्य, हिजकिएल, यशाया और अय्यूब, इन सब ने चिन्ह इस्तेमाल किए। चिन्ह मतलब क्या? जैसे पानी, बादल, हवा, आग, रोटी, ठीक है, तलवार, हथौड़ा, ये सारे चिन्ह हैं। लेकिन इन सब का क्या है? एक मतलब है। इनको हम साधारण तरीके से मतलब नहीं निकाल सकते, ठीक है। साधारण तरीके से इसका अगर अनुवाद करना शुरू कर दिया तो फिर सही अनुवाद नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले पहचानना है अभी कौन सी भाषा है। अभी मैं आपको चिन्ह वाली भाषा की एक उदाहरण दूंगा, मत्ती 16:6, मत्ती 16:6, मत्ती 16:6। मत्ती 16:6,
यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के समीप से चौकस रहना।
देखो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को बोला, फरीसी और सदूकी के खमीर से क्या रहना? चौकस रहना। सो इसका क्या मतलब? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला था कि ओके अगर वो ब्रेड दें खमीर से बना हुआ तो वो मत खाना? नहीं ना, कुछ और मतलब है ना। तो 16:12 पढ़ेंगे अभी। क्या है यहाँ पे चिन्ह इस्तेमाल हुआ है? खमीर, ठीक है।
तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसी और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा।
तो अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि खमीर का मतलब है सदूकी और फरीसियों की शिक्षा। खमीर का मतलब क्या है? खमीर प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह के तौर पे इस्तेमाल किया, लेकिन उसका असली मतलब क्या है? फरीसी और सदूकियों की क्या शिक्षा। अभी फरीसी और सदूकी क्या शिक्षा देते थे ये हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 23:8 में। प्रेरितों के काम 23:8, तेईस का आठ, मैथ्यू 16:6, 16:12 और प्रेरितों के काम 23:8।
तो उसने उसको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा, पुलिस बंदरों ने मुझे बुलाकर विनती की।
नहीं नहीं नहीं, प्रेरितों के काम 23:8,
क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों मानते हैं।
देखो सो सदूकी क्या कहते हैं? ना पुनरुत्थान है, ना आत्मा है, ना स्वर्गदूत है। तो ये क्या है? गलत शिक्षा। ये क्या है? सो प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को गलत शिक्षा से सावधान रहने को बोला था। तो खमीर का मतलब क्या होता है? गलत शिक्षा। बाइबल में जहां पे भी खमीर का इस्तेमाल होता है ना, उसका मतलब होता है गलत शिक्षा। तो ऐसे चिन्ह हैं। एक और चिन्हों वाली भाषा की उदाहरण मैं आपको दिखाता हूं। सबोपदेशक 11 का 1, सबोपदेशक 11 का 1, एक्लिसियासिड्स इंग्लिश में, नेपाली में तो मैं नहीं बता सकता। एक्लिसियासिड्स 11 का 1, सबोपदेशक ब्रदर, नीति वचन के बाद भजन संगीता, भजन संगीता के बाद नीति वचन, 11 का 1। जी
11 का 1 सर।
हाँ जी।
अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा।
देखो, अगर इसको साधारण समझे तो ये क्या लगेगी, मूर्खता लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी ना। रोटी तैर सकती है पानी पे? बहुत दिनों के बाद तो छोड़ो, उसी वक्त आधे घंटे बाद ही उसका क्या बन जाएगा, आटा बन के नीचे लग जाएगी। तो ये क्या क्या मतलब है? ये चिन्ह वाली भाषा है। चिन्ह वाली भाषा को अगर साधारण तरीके से समझने लगे तो ऐसे ही मूर्खता ही लगेगी, है ना, लगेगी ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं हम, तीन चिन्ह हैं इसमें। एक तो रोटी, एक पानी, और एक क्या, बहुत दिनों के बाद। रोटी, पानी, बहुत दिनों के बाद। रोटी का क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन। रोटी का क्या मतलब है? पानी का क्या मतलब है? हाँ, पानी का मतलब पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 17 का 15वीं आयत में। पानी का मतलब पता चलेगा, पानी के चिन्ह का मतलब पता चलेगा। 17 का 15, 17:15। प्रकाशित वाक्य 17 का 15।
फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन परिवेश बैठी है वे लोग और भीड़ और जातियों और भाषा है।
देखो, पानी का क्या मतलब है? संसार। पानी का क्या मतलब है? रोटी का क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन। बहुत दिनों के बाद का मतलब पता क्या है? जब परमेश्वर का राज्य आएगा। बोलता है आज तू परमेश्वर का वचन इस संसार में बोल दे, इस संसार में परमेश्वर का वचन छोड़ दे, बहुत दिनों के बाद, कब? जब परमेश्वर का राज्य आएगा, यही वचन इन लोगों की जुबान पे होगा। पढ़ लो भजन संगीता 22 का 27 और 28। भजन संगीता 22 का 27 और 28। भजन संगीता 22 का 27 से लेके 28 तक।
क्योंकि राज्य यहोवा ही का है।
देखो, क्योंकि राज्य परमेश्वर का है,
वो सब जातियों पर प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हस्त कुछ लोग भोजन करके दंडवत करेंगे, वे सब जितने मिट्टी में मिल जाते हैं, अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे,
उसी के सामने घुटने टेकेंगे। क्योंकि राज्य, आगे भी पढ़ लो,
एक वंश उसकी सेवा करेगा और दूसरी पीढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा।
नहीं, आपने आपकी बाइबल में बहुत गड़बड़ी है ब्रदर। 22 का 27 और 28 से बोलते हैं सारे धरती के क्या बोलते हैं सारे संसार के लोग परमेश्वर की तरफ परमेश्वर को याद करके मुड़ेंगे और सारी देशियां देश सारे यातियां परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे। ऐसा होता है क्योंकि राज्य परमेश्वर का है और वो ही उनके बीच में राजा है। चलो ऐसा है। तो मतलब के कहने का मतलब ये है कि इसमें दो जो चिन्ह इस्तेमाल हुए रोटी पानी और बहुत दिनों के बाद रोटी का मतलब परमेश्वर का वचन पानी का मतलब संसार और बहुत दिनों का बाद का मतलब जब परमेश्वर का राज्य आएगा। तो इसलिए भाषा को ये है दूसरी चाबी भाषा को पहचानना बहुत जरूरी है। जब आप बाइबल पढ़ो तो उसको पहले अभी लगा के देखो कि ये साधारण भाषा है सोचो ये चिनात्मक भाषा है या फिर ये दृष्टांतिक भाषा है। ये कैसे पता चलेगा जैसे हमने एक दृष्टांत पढ़ा अभी उसमें हमें पता बाइबल ही बोल रही है 99 धर्मी तो हो नहीं सकते हैं इसका मतलब ये साधारण भाषा तो नहीं है। पहली ऑप्शन खत्म। दूसरी ऑप्शन है ये कहानी के रूप में बोली गई है तो इसका मतलब है ये दृष्टांत है ऐसे पहचानना है। ठीक है, ये है दूसरी चाबी। दूसरी चाबी में हमने क्या सीखा तीन तरह की भाषा है तीन तरह की भाषा में से कौन सी भाषा इस्तेमाल हुई है पहले उसको पहचान के फिर उसका अनुवाद करना है। अगर चिन्ह इस्तेमाल हुए हैं तो पहले चिन्हों का मतलब ढूंढना है बाइबल में कि इस चिन्ह का मतलब क्या है इस चिन्ह का मतलब क्या है रोटी का मतलब क्या है पानी का मतलब क्या है बहुत दिनों के बाद का मतलब क्या है फिर अनुवाद करेंगे तो फिर क्या बोलते हैं संतुष्टि पूर्वक अनुवाद भी होगा और परमेश्वर की नज़र में परवान भी होगा। ठीक है, दूसरी चाबी समझ में आ गई। तीसरी चाबी अभी तीसरी चाबी क्या है कि बाइबल को बाइबल के एक टॉपिक पे बात करनी है एक विषय पे बात करनी है विषय वाइज हमने पढ़ाई करनी है। अगर हम उत्पत्ति से पढ़ते पढ़ते प्रकाशित वाक्य तक पहुंच जाएं हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला। अगर हम एक विषय लें विषय के मिलते जुलते सारे वचन निकालें वचन निकाल के फिर उस विषय के को पढ़ें तब हमें कुछ हासिल होगा नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। चाहे आप 50 बार उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लो सारी तो आप अपने दिमाग में या मन में नहीं रख सकते ना, है ना। वैसे भी उत्पत्ति में जैसे हमने देखा हनोक के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ चैप्टर क्लोज फिर कब जाके खुला चैप्टर इब्रानियों में तो जब आप इब्रानियों तक पहुंचेंगे तब तक हनोक का नाम ही भूल जाओगे। सही बात है ना। सो इसलिए एक विषय पे बात करनी है एक टॉपिकल स्टडी करनी है ये बहुत बड़ा काम है। लेकिन आज हम बहुत अंतिम समय में पहुंच गए हैं तो परमेश्वर ने इसको बड़ा आसान कर दिया है कि कंकॉर्डेंस इससे पता है ना आपको कंकॉर्डेंसेज आ गई हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंकॉर्डेंस से पता चलता है एक यंग एक स्ट्रॉन्ग तो उसमें क्या पता चलता है हमें कि इब्रानी भाषा में अच्छा कौन सा शब्द था ये शब्द कितनी बार इस्तेमाल हुआ वो सारे वचन निकाल के आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए ऑलरेडी हुआ पड़ा है हमने किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए टॉपिक पे बात करो ये है तीसरी चाबी। टॉपिक पे पढ़ो जैसे आत्मा क्या होती है उद्धारता क्या है जिसे हम सेल्वेशन बोलते हैं बपतिस्मा क्या है कलीसिया क्या है पिता क्या है पुत्र क्या है पवित्र आत्मा क्या है नर्क क्या है। ठीक है, ये सारे विषयों पे बात करेंगे विषयों को निकाल के पढ़ेंगे तब हमारी जो है ना फलदायक स्टडी होगी और हमारी आगे को बढ़ोतरी भी होगी। तो अभी इससे पहले कि हम अपना आज का विषय ख़त्म करें हम कुछ चिन्ह देखेंगे बाइबल में कुछ चिन्ह। ठीक है, जैसे अपना आग और हथौड़ा। ठीक है, यरमिया 23:29 यर्मिया, यशाया के बाद यर्मिया। इतना आगे नहीं ब्रदर, इतना आगे नहीं, भजन संगीता के बाद, भजन संगीता के बाद, नीति वचन के बाद, यशाया के बाद। तेईस 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 का उनतीस उनतीस
यह भी वाणी है कि क्या मेरा वचन आग का नहीं, क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले।
तो इसमें दो चिन्ह इस्तेमाल हुए, आग और हथौड़ा, लेकिन उसका मतलब क्या है? परमेश्वर का, आग का मतलब है परमेश्वर का वचन, हथौड़े का मतलब है परमेश्वर का वचन। इसी तरह से आग क्या करती है, आग का क्या काम होता है? आग के दो काम होते हैं, आपको पता, एक तो नाश करती है, एक शुद्ध भी करती है। करती है या नहीं करती है? शुद्ध कैसे करती है पता? सोने को शुद्ध कैसे किया जाता है? और आग नाश भी करती है, नाश का तो पता ही है ना, आग कर देती है ना, ठीक है, खत्म भी कर देती, भस्म भी कर देती है और शुद्ध भी करती है, दो काम करती है या नहीं? इसी तरह से परमेश्वर का वचन भी है, परमेश्वर का वचन भी दो काम करता है, पाप को नाश करता है और अशुद्ध को शुद्ध करता है। करता है या नहीं करता है? है या नहीं? और हथौड़े समान नहीं है क्या? पत्थर, पत्थर से पत्थर दिल को भी क्या कर देता है? तोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए ये चिन्ह दिया गया है परमेश्वर के वचन को, आग और हथौड़ा। और एक चिन्ह दिया है परमेश्वर के वचन को, लाइट, ठीक है। भजन संगीता 119 का 105, 119 का 105,
तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है।
देखो, तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या? दीपक और मेरे रास्ते का उजाला। सो उजाला का क्या मतलब है? परमेश्वर का वचन। और उजाले का उल्ट क्या होता है जिसमें हम बैठे हैं अभी? अंधेरा। उजाला तो रोशनी होती है ना ब्रदर, इसका उल्ट अंधेरा। अंधेरा क्या हुआ फिर? झूठ। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? सच्चाई। और सच्चाई का उल्टा क्या होता है? झूठ, ठीक है। सच्चाई का उल्टा क्या होता है? झूठ। तो परमेश्वर का वचन है सत्य, जो है लाइट यानी के उजाला यानी के रोशनी, और झूठ का मतलब क्या है? अंधेरा। इसीलिए यशाया 60 का 2 पढ़ लो, यशाया 60 का 2। देखो यशाया भी चिन्ह इस्तेमाल कर रहा है, यशाया 60 का 2।
देख पृथ्वी पर तो अंधेरा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है।
देखो, लेकिन ये बात है क्या? अंधकार छाया हुआ है इस राज्य लोगों पर? अरे लाइट जाती, जब सूर्य छिपता है तो हमारे घरों में लाइट है, सड़कों पे लाइट है, तो ये यशाया के कहने का क्या मतलब? अंधकार का मतलब है झूठ, यानी कि जो शैतान का फैलाई हुई गलत शिक्षा वो सारे संसार पे क्या हुई है, फैली हुई है। परमेश्वर का वचन जो है, जिसके पास तो परमेश्वर का वचन है वो किसमें है, उजाले में, लेकिन बाकी किसमें है, अंधेरे में। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे चिन्हों को देखना पड़ता है, फिर उनका मतलब निकालना पड़ता है। और भाई परमेश्वर के वचन को क्या बोला गया है, तलवार, पता है ना, तलवार, तलवार को भी परमेश्वर के वचन के बारे में बोला गया है। और इब्रानियों 4:12 में देखिए, पढ़ते हैं इब्रानियों 4:12, इब्रानियों 4:12, आपको ये याद करना है, ठीक है, अगली क्लास से पहले।
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है।
देखो, दो धारी तलवार जैसा है, इसका क्या मतलब होता है, दो धारी तलवार का मतलब जो दोनों तरफ, तो लेकिन इसको हम कैसे समझते हैं, हम समझते हैं कि अरे यार बाइबल एक तरफ ये बोल रही है, दूसरी तरफ ये बोल रही है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते तो मेरे योग्य नहीं, एक तरफ बोलते हैं अगर तुम मेरे मुझसे ज़्यादा अपने माँ बाप को प्रेम करते हो तब भी मेरे योग्य नहीं, तो करे क्या, फिर बोलते हैं अरे बाइबल दो धारी तलवार है छोड़ो, ऐसा क्या बोलते हैं ना, इसका मतलब ऐसा निकालते हैं ना। लेकिन इसका दो धारी तलवार का मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सुनने वाले को भी काटती है और बोलने वाले को भी काटती है। अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ तो वो मुझ पे भी उसका इफेक्ट हो रहा है, आप पे भी वार हो रहा है और मुझ पे भी वार हो रहा है, ये है इसका मतलब दोधारी तलवार का। ठीक है, जो दोनों तरफ चलती है। ठीक है, फिर और चिन्ह क्या देखा हमने, रोटी देखा, खमीर देखा, है ना, देखा ना ये सारे चिन्ह। तो इसलिए चिन्हों वाली भाषा को पहचानना है, चिन्ह का मतलब निकालना है, फिर अनुवाद करना है। दृष्टांत को साधारण तरीके से अनुवाद नहीं करना है, साधारण को दृष्टांत में नहीं बदल देना है, और साधारण को चिन्ह में नहीं बदलना है, चिन्ह को साधारण में नहीं बदलना है। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तब हम अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और टॉपिकल स्टडी करनी है, विषय पे बात करनी है, ऐसे ही बस किताब पढ़ने वाला काम नहीं करना। ये कोई नॉवल नहीं है, पढ़ लिया चलो एक बार दो बार पढ़ लिया 10 बार पढ़ लिया। ठीक है, इसको विषय वाइज पढ़ना है। तो इस तरीके से हमारी जो पढ़ाई है वो फलदायक और अच्छी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें आत्मा और सच्चाई से, तो ये सच्चाई का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और सच्चाई क्या है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी है। इसलिए हमें पूरा क्या बोलते हैं, चौकन्ने होके सही तरीके से पवित्र शास्त्र को पढ़ना और समझना और ज्ञान रखने की ज़रूरत है, अगर हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्रियां बनना चाहते हैं। तो आज परमेश्वर की कृपा से हमने पहला स्टेप उठा लिया है। तब तक परमेश्वर आपको सबको आशीष दे, अगली क्लास में मिलेंगे, आमीन।